वहीं दूसरी तरफ इप्सिता कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर निकली और उसने अभिमन्यु की वही शर्ट पहनी हुई थी। वो जैसे ही रूम के अंदर आई, उसने देखा अभिमन्यु फोन पर खड़े होकर किसी से बात कर रहा था और सामने इप्सिता का सूटकेस रखा हुआ था। इप्सिता सीधे वही शर्ट पहनकर आई और वो सूटकेस खोलने की कोशिश करने लगी। शायद सूटकेस की चेन अटक गई थी और इप्सिता उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। इप्सिता ने सूटकेस को गिराया और वहीं जमीन पर ही घुटनों के बल बैठकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी। उसके बाल गीले थे और उसने अभिमन्यु की वही वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। अभिमन्यु जैसे ही फोन पर बात करके पीछे मुड़ा, उसने इप्सिता की तरफ देखा। इप्सिता बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी और सूटकेस को खोलने में जिस तरह से स्ट्रगल कर रही थी। उसे देखकर अभिमन्यु ने फोन पर बात करते हुए कहा, हाँ ठीक है, हम आपकी बात समझ गए हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु ने फोन काट दिया और अपना फोन बेड पर रखकर वो सीधे इप्सिता की तरफ आने लगा। उसने इप्सिता के बगल में बैठकर इप्सिता के चेहरे की तरफ देखा। इप्सिता की मांग में अभी भी हल्का सा सिंदूर लगा हुआ था और उसने अभिमन्यु की शर्ट के ऊपर के दो बटन खोल रखे थे, जिससे इप्सिता की कॉलर बोन और उसका मंगलसूत्र साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर अभिमन्यु एक टक बस इप्सिता की तरफ देखता रहा। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप पर हमारे नाम का ये मंगलसूत्र और सिंदूर इतना ज्यादा सूट करेगा। आप सच में बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही हैं। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर मुस्कुराई और उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप और आपकी बातें, हमें इस तरह से देखना बंद करिए और हमारी थोड़ी हेल्प करिए, ये सूटकेस पता नहीं क्यों खुल नहीं रहा है। अभिमन्यु ने इप्सिता की ये बात सुनी और उसने इप्सिता के हाथ को पकड़ते हुए कहा, जब हम यहाँ पर हैं तो आपको इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़िए हम खोलते हैं। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ा हुआ था। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा और अपना हाथ तुरंत पीछे कर लिया। इप्सिता को अभिमन्यु की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा था और इप्सिता समझ गई थी कि अभिमन्यु अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा, इसलिए इप्सिता अभिमन्यु से थोड़ा सा दूर हट गई। उसे इस तरह दूर हटते देखकर अभिमन्यु शरारत से मुस्कुराया और उसने सूटकेस की चेन को खोला। जैसे ही सूटकेस खुला, इप्सिता ने उसमें दिख रही अपनी एक फ्रॉक सूट को निकाला और उसे लेकर वो उठकर खड़ी हो गई। इप्सिता जा ही रही थी कि अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, बहुत जल्दी है आपको हमसे दूर जाने की, मगर भूलिए नहीं, आप अब मिसेज अभिमन्यु राजवंशी हैं, आप हमसे चाहकर भी दूर नहीं जा सकती। इप्सिता अभिमन्यु के हाथ की तरफ देखते हुए बोली, कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, हम चेंज करने जा रहे हैं। अब हम इप्सिता अभिमन्यु राजवंशी बन गए हैं तो इस तरह शर्ट पहनकर तो अपने ससुराल में नहीं रह सकते ना, छोड़िए हमें चेंज करके आने दीजिए। अभिमन्यु उठकर खड़ा हुआ और उसने इप्सिता की कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ऐसे ही रही तो। इप्सिता उसकी बात सुनकर बोली, आपको प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हमें तो है ना, और हम यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकते, छोड़िए हमें चेंज करके आने दीजिए। अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाया और उसने इप्सिता की कमर पर अपना हाथ कसते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी हम इतनी आसानी से आपको नहीं जाने देने वाले। इप्सिता ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़िए हमें अभिमन्यु, हम सिर्फ चेंज करने जा रहे हैं। अभिमन्यु इप्सिता के होंठों के करीब आते हुए बोला, वही तो हम बोल रहे हैं, क्या जरूरत है चेंज करने की, पता है इसमें भी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। इप्सिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और वो अभिमन्यु के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, अभिमन्यु के हाथ उसकी कमर पर और भी ज्यादा कस गए। अभिमन्यु इप्सिता के होंठों के बिल्कुल नजदीक आ गया और वो उसे किस करने ही वाला था। तभी इप्सिता ने अभिमन्यु के होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए हम बहुत थक गए हैं। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम आपको किस करने वाले हैं, और वैसे भी रही बात थकान की तो हमें बिल्कुल भी नहीं थकान है। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता के हाथ को अपनी होंठों के पास से हटाया और वो इप्सिता के बिल्कुल नजदीक चला गया। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देख रही थी, मना करने पर भी अभिमन्यु मान नहीं रहा था और वो उसे किस करने के लिए उसके होंठों के बिल्कुल नजदीक आ गया। जैसे ही इप्सिता के होंठों पर उसके होंठ टच हुए, इप्सिता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। इप्सिता को इस तरह अपनी आंखें बंद करके देख अभिमन्यु मुस्कुराया और उसने एक प्यारी सी किस उसके होंठों पर करते हुए उसकी कमर से अपना हाथ हटा लिया। इप्सिता अभिमन्यु के इस किस को देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। अभिमन्यु ने कहा, अभी आप थकी हैं तो हम भी आपको परेशान नहीं करेंगे, जाइए। अभिमन्यु की ये बात सुनकर इप्सिता को बहुत अच्छा लगा कि अभिमन्यु उसकी बात मान रहा है और उसने उसकी बात मानकर उसे किस नहीं किया। इप्सिता काफी ज्यादा खुश हो गई और उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए वो वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि वो रुकी। अभिमन्यु उसे रुकते देखकर कुछ बोलने जा ही रहा था कि इप्सिता ने पीछे मुड़कर अभिमन्यु के गाल पर किस किया और भागते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। अभिमन्यु ने इप्सिता की किस को जैसे ही फील किया, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने गालों को टच करते हुए कहा, कितनी क्यूट हैं आप। इतना बोलकर अभिमन्यु मुस्कुराने लगा और इप्सिता चेंजिंग रूम में जा चुकी थी। थोड़ी ही देर में इप्सिता बाहर निकली और उसने देखा कि इप्सिता का सूटकेस पूरी तरह से खाली था और उसके सारे कपड़े कबर्ड में रख दिए गए थे। इप्सिता कबोर्ड की तरफ देखते हुए बोली, हमारा सामान? अभिमन्यु ने कहा, हमने रखवा दिया है और हम कब से आपका वेट कर रहे थे, खाना ठंडा हो रहा है। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, आप फ्रेश हो गए? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो इप्सिता के साथ बैठकर डिनर करने लगा। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी और उदय भी फ्रेश हो चुके थे और उदय फोन पर अपने ऑफिस के किसी कलीग से बात कर रहा था। तभी उनके रूम की डोरबेल बजी। उदय उठने जा ही रहा था कि तभी नंदिनी ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दीजिए आप, हम जाते हैं। इतना बोलकर वो उठी और दरवाजे की तरफ गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक स्टाफ का आदमी था। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी और उसने कहा, मैम योर डिनर। नंदिनी ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, लेकिन हमने तो कोई डिनर ऑर्डर नहीं किया। उदय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमने किया था। उदय की बात सुनकर नंदिनी आगे से हटी और वो सामने खड़ा वेटर अंदर आया और उसने टेबल पर डिनर रखते हुए कहा, सर इट्स योर डिनर एंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर यू और ब्रेकफास्ट में आपको जो खाना हो हमें मैसेज कर दीजिएगा। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वेटर वहां से चला गया। नंदिनी उदय की तरफ देख रही थी और उदय दोबारा फोन पर बात करने लगा। नंदिनी उदय को फोन पर बात करते हुए देखकर एक गहरी सांस लेने लगी और तभी उसने खाने की तरफ नजर डाली। उदय ने सारा खाना नंदिनी की पसंद का ऑर्डर किया था, जिसे देखकर नंदिनी काफी ज्यादा खुश हो गई और वो काफी ज्यादा भूखी थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो जल्दी जल्दी सारा खाना सर्व करने लगी। तभी उसने देखा कि उदय अभी भी फोन पर बात करने में बिजी है। नंदिनी रुक गई और उठकर उदय के पास जाकर खड़ी हो गई। उदय ऑफिस का ही कोई काम अपने कलीग से डिस्कस कर रहा था। ये देखकर नंदिनी ने गहरी सांस ली और घड़ी की तरफ इशारा करते हुए उदय से फोन रखने के लिए कहा। उदय ने दो मिनट और मांगे और वो फोन पर कंटिन्यू बात करने लगा।
उदय जितना सीरियस होकर फोन पर बात कर रहा था, ये देखकर नंदिनी को उदय पर बड़ा प्यार आ रहा था, क्योंकि उदय नंदिनी के साथ जब से था, उन दोनों की शादी के बाद से, उदय हमेशा ही उसका बहुत ध्यान रखता था। ये सारी चीजें नंदिनी नोटिस करती थी और अब उदय पर नंदिनी को बड़ा प्यार आ रहा था, इसलिए नंदिनी ने उदय की तरफ देखा और वो उसके नजदीक जाकर उसे बैक हक करके उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोली, चलिए उदय बस करिए, और कितनी देर बात करेंगे, वैसे भी खाना ठंडा हो रहा है। जैसे ही उदय ने नंदिनी का हाथ अपने पेट पर फील किया, उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ठीक है आप इतना काम करके मुझे बताइए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे सुबह कॉल कर लीजिएगा। इतना बोलकर उदय ने कॉल कट किया और नंदिनी की तरफ देखकर उसने उसके गाल पर किस करते हुए बोला, सॉरी वो थोड़ा ऑफिस का काम था, चलिए डिनर करते हैं। इतना बोलकर वो लोग भी डिनर करने के लिए बैठ गए। नंदिनी ने डिनर करने के बाद उदय की तरफ देखते हुए कहा, अब रात में तो आप कोई ऑफिस का काम नहीं करेंगे ना। उदय ने नाम में अपना सिर हिलाया और उसकी बात सुनकर नंदिनी काफी खुश हो गई। उसने अपने मन में कहा, अब तो हम यहाँ पर अकेले हैं और इतना अच्छा मौका भी है, अब शायद हमें उदय के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। नंदिनी इतना सोचकर थोड़ा सा मुस्कुराई और उदय की तरफ देखने लगी। उदय वहीं बेड पर जाकर बैठ गया और नंदिनी वॉशरूम गई। उसने वॉशरूम में फ्रेश होकर बाहर निकली, एक अच्छा सा परफ्यूम लगाया और बिल्कुल लाइट मेकअप करके वो उदय के बगल में आकर बैठ गई। नंदिनी उदय को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रही थी और उदय ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या? नंदिनी ने नाम में अपना सिर हिलाया और तभी उदय बेड पर लेट गया। और उसने अपना हाथ फैलाकर नंदिनी को अपने हाथ पर लेटने का इशारा किया। नंदिनी भी चुपचाप उसके बगल में आकर लेट गई।